आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे मौसम का हाल। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 15% कटौती की भी खबर होगी। कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें भी लेकर आए हैं हम। पुलवामा में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और इस क्रम में एक सैनिक भी शहीद हुआ है। इन खबरों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर हादसे की भी खबर होगी आज के पॉडकास्ट में। और आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित फर्जी टूल किट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15% कटौती करने का आदेश दिया है। उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस ₹3,000 रही है तो स्कूल उसमें 15% की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल ₹2,550 ही चार्ज करेंगे। स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज़्यादा फीस ली तो स्कूलों को वह फीस लौटानी होगी या आगे की फीस में एडजस्ट करनी होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना काल में जब सभी पेरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बड़ी राहत होगी। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोक सकेगा। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुरुवार को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कृषि कानून कोई गीता या कुरान नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो सकता। केसी त्यागी ने कहा कि सरकार को किसानों से वार्ता करनी चाहिए और किसानों को जिद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को किसी राजनीतिक पार्टी का मोहरा भी नहीं बनना चाहिए। सरकार और टिकैत के बीच मध्यस्थता करने के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि वह इस काबिल नहीं हैं। त्यागी ने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य जरूर मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर केसी त्यागी ने पार्टी का स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता है कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन अगर तालमेल नहीं होता है तो 200 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को लेकर फिर से चिंता जताई है। WHO के अनुसार यूरोप में जहां कोरोना के मामले कम हो गए थे, वहीं एक बार फिर 10 सप्ताह बाद इनमें बढ़ोतरी हो गई है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी AFP ने दी। WHO ने कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के सभी देशों को एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैलेगा। WHO ने कहा है कि कोरोना का वेरिएंट अब लगभग 100 देशों में मौजूद है और साफ चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस का प्रमुख वेरिएंट बन जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरते भारत में संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया है। भारत के अलावा ब्राजील और अमेरिका ही दो ऐसे देश हैं जहां 4 लाख से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। हालांकि भारत की तुलना में दोनों देशों में मौत की संख्या में 1 लाख से ज़्यादा का अंतर है। गुरुवार में देश में 700 से ज़्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई। यहाँ अब तक 6,20,645 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर बने ब्राज़ील में 5,20,189 लोगों की मौत हुई है। इन तीन राष्ट्रों के अलावा मैक्सिको में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पेरू में आंकड़ा 2 लाख पहुंचने के करीब है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह जानकारी कश्मीरी जोन की पुलिस ने दी है। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जबकि एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। पुलिस ने बताया कि पुलवामा स्थित हाजिन राजपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इनपुट मिले थे कि इलाके में कुछ आतंकी हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और भारी गोलाबारी की। यह मुठभेड़ सुबह तक जारी थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मौके पर चार आतंकियों के होने की सूचना है। एनकाउंटर में सेना, पुलवामा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में सेना के 2 जवान भी घायल हुए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई दुर्घटना में 5 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई है, जबकि दुर्घटना में घायल ट्रक चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हैं, जिन्हें SKMGH में भर्ती कराया गया है। यह हादसा सरैया थाना इलाके के सहदानी गांव में हुआ है। बीती रात मुजफ्फरपुर से छपरा की ओर एक ट्रक जा रहा था। तकरीबन 8:30 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर NH-722 के किनारे गांव में बने हुए एक घर में घुस गया। यह घर ग्रामीण लच्छू पासवान का बताया जा रहा है। बताया यह भी गया कि लच्छू पासवान के घर के आंगन में उनका परिवार और आसपास के कई परिवारों के बच्चे खेल रहे थे। उसी वक्त अनियंत्रित ट्रक ने सबको कुचल दिया। 4 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 1 की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में हुई। इस दुर्घटना में ट्रक का ड्राइवर भी घायल हो गया था, जिसे सराया PHC में भर्ती कराया गया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित फर्जी टूलकिट मामले में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को लेकर दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रोक के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 11 जून को 2 अलग अलग आदेश पारित कर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकी में अंतरिम राहत दे दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह पूरी तरह से 2 राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और पहली नज़र में यह स्थापित होता है कि मौजूदा प्राथमिकी राजनीतिक मकसदों से दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील सुमीर सोढ़ी के जरिए 2 अलग अलग अपील दायर की है। एक अपील रमन सिंह को दी गई राहत के खिलाफ है, जबकि दूसरी अपील संबित पात्रा को दी गई राहत के खिलाफ। तेज गर्मी की मार का सामना कर रहे दिल्ली, पंजाब समेत कुछ राज्यों को फिलहाल 2 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। गुरुवार को मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक लू चल सकती है। वहीं गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में तेज आंधी तूफान की संभावना है। बिहार में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। राज्य में शुक्रवार को भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी बुलेटिन में कहा कि अगले 5-6 दिनों में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम, केंद्र और पश्चिमी हिस्सों में कम बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 2-3 जुलाई और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम, असम और मेघालय में 1-4 जुलाई तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।